ओम शांति। सभी प्यार से बोलें ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज आप सभी स्पोर्ट्स विंग के महानुभाव ज्ञान स्वरूप परिसर में पधारे हैं। आपका राजयोग का प्रथम सत्र अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ, इसमें हार्दिक अभिनंदन है। अभी अभी आप सबको बहन ने बताया कि सेल्फ अवेयरनेस का किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, एक चैंपियन के लिए, खिलाड़ी के लिए, या फिर कोई भी जिंदगी के क्षेत्र में, इसकी कितनी महती आवश्यकता है। क्योंकि जब तक, अब एक खिलाड़ी को अगर हम लेते हैं, जब वो मैदान में गोल पोस्ट के सामने जाता है तो चारों तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर्स आते हैं। उसके बीच में भी, प्रेशर्स के बीच में उनका मन स्टेबल रहे, मन बिल्कुल शांत हो और अपने में आत्मविश्वास हो, आत्म संयम हो, तो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है और सही डिसीजंस भी ले सकता है। तो हमारा एक बहुत सुंदर गीत है, आपको बाद में सुनाया जाएगा, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। और जो जिंदगी में मुश्किलात आए उसे दूर से धकेलिए। तो मैं सोच रही थी कि एक तो हम अपने इस जगत में खेल खेलते हैं, तो जीवन भी एक खेल ही है। इस सृष्टि रूपी मैदान पर हम सभी उतरे हैं इस देह रूपी वस्त्र को धारण करके खेल खेलने के लिए। लेकिन इस खेल में हमें वर्ल्ड चैंपियन बनना है। वर्ल्ड चैंपियन, आप सोचेंगे वर्ल्ड चैंपियन कौन है, वो आपको आगे बताया जाएगा कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य क्या है। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, वर्ल्ड चैंपियन का मतलब यह है कि एक परफेक्ट मानव, केवल एक क्षेत्र में नहीं लेकिन हर क्षेत्र में प्रतिभाशाली हो, और जिसको वर्ल्ड रूलर कहते हैं। वह बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, चाहे आपकी जिंदगी में जीत है या हार है, कहते हैं हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है। क्योंकि जब भी हम गेम खेलने लगते हैं तो जब इनिशियली हम जीतते हैं, उस जीत से हमें एंथुसियाज्म, करेज, जील बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुशी, और आगे के लिए भी हम सोचते हैं कि हम इसमें आगे से आगे बढ़ें। लेकिन जब हम जीतने लगते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगता है, लेकिन कभी कभी अगर हमारी हार होने लगती है तो आप देखेंगे उस समय हमारा मन उसमें थोड़ा सा हताश, उदास, निराश, डिसहार्टेंड, डिप्रेस्ड, ऐसी स्टेज में आने लगता है। लेकिन अगर हम ये अभ्यास कर लेते हैं, हमें सेल्फ अवेयरनेस दी जाती है राजयोग के अंतर्गत, राजयोग का या मेडिटेशन का अभ्यास कर लेते हैं, तो कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, मन हमेशा स्टेबल रहे, असली जीत वही है। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है। क्योंकि उसके मन में ऐसा रहता है कि मैं केवल एक क्षेत्र में मेरी हार हुई है, जिंदगी से हार नहीं हुई, वो एफर्ट करना बंद नहीं करता है। तो इसलिए हर जगत में सेल्फ के बारे में जानकारी अहम भूमिका निभाती है। अब आप कहेंगे वो सेल्फ क्या है? हमारे दो सेल्फ हैं, एक है आउटर सेल्फ और एक है इनर सेल्फ। आउटर सेल्फ से हम परिचित हैं, राइट? एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, सबके लिए है। आप अपने देखते हैं, हम आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, डीप ऑब्जर्वेशन। अगर आपने पहले एक्सरसाइज की है तो कोऑपरेट करें दूसरों को आंसर करने के लिए। इस हॉल में जो भी आप देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, चाहे माइक है, माइक्रोफोन है, ये स्टैंड है, टेबल है, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, एक बार आप देख लीजिए आराम से। फिर आप में से हम एक या दो को खड़ा करेंगे कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या है इसके अंदर हॉल में, देख लीजिए आप। देख लिए हैं सबने? कौन बताएगा? आप बता सकते हैं? कोई बात नहीं, बताइए जो भी आपने देखा है। हाँ जी, मेरे को देखा, बहुत अच्छी बात, नाइस। जिसकी जिस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत आप यहाँ पहुंचे हैं, आपने वो देखा, ब्रह्मा बाबा के जो पिक्चर है उनको देखा, ज्योति बिंदु को देखा, स्टेज को देखा, हॉल को देखा, दीदियों को देखा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और भी कुछ? बड़ी अच्छी इनकी ऑब्जर्वेशन है, ताली बजाएं भाई। और भी कुछ बीच में कोई बैठे हैं तो बताना चाहे तो बता सकते हैं। हाँ जी, वो भाई जी हाथ खड़ा करें। ओम शांति, बहुत अच्छा। इन्होंने भी ऑलमोस्ट जितने भी चीजें देखी हैं, राइट। लाइट्स है, स्टेज है, फॉल सीलिंग है, माइक्रोफोन है, हैं? राइट, दोनों तरफ सीढ़ियां भी हैं, फ्लावर पॉट्स भी हैं, फ्लावर्स, डेकोरेटेड फ्लावर्स हैं, राइट। बहुत कुछ देखा, बहुत अच्छा, थैंक यू। आपने तो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है। अभी आप देखेंगे इन्होंने बहुत माइन्यूटली सब कुछ देखा है। और ज्यादातर क्या होता है कि हमारी ऑब्जर्वेशन हमें ये बताती है कि जिस चीज का जिसमें जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट होगा वहां ध्यान ज्यादा जाता है, राइट? लेकिन अभी तक आपने ये कहा कि हमने दीदी को देखा, सामने ज्ञान सुना रहे उनको देखा, पार्टिसिपेंट्स को देखा, माइक्रोफोन को देखा, पोडियम को देखा, सब कुछ आपने बताया, लेकिन अपने आप को देखा? आप भी यहां उपस्थित है, बताएं, नहीं देखा, भूल गए। सबको हम देख रहे हैं लेकिन स्वयं को नहीं देख रहे, अपने आप को हम नहीं सोच पाए कि मैं भी यहां हॉल में उपस्थित हूं। यही है प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस की। और यहां क्या बताया जाता है? सबसे पहले क्या बताया जाता है? मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं। क्योंकि प्रोफेसर आइंस्टाइन वो अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे, तो किसी विद्यार्थी ने उनसे पूछ लिया, ही वॉज द फादर ऑफ साइंस, तो किसी ने पूछ लिया कि सर डू यू नो हु यू आर, तो थोड़ा उनका ईगो हर्ट हुआ. उन्होंने कहा व्हाट अ फनी क्वेश्चन दिस बॉय इज आस्किंग, डजंट ही अवेयर दैट आई एम हिज प्रोफेसर. बाद में सोचने के बाद कहते हैं कि ठीक ही पूछ रहा है, मैं अपने को नहीं जानता मैं कौन हूं, और जिस दिन मैं जान जाऊंगा इस दुनिया को बदल के रख दूंगा. ये बहुत बड़ी शक्ति है स्वयं को जानना. विवेकानंद भी जब अपने गुरु के पास गए, उन्होंने दरवाजा नॉक किया, अंदर से आवाज आई आप कौन, तो कहा मैं यही तो जानने आया हूं मैं कौन हूं. अगर मैं जान लेता तो मैं आपके पास क्यों आता. तो ये केवल जिंदगी का प्रश्न नहीं है, लेकिन एक पहेली है, पजल. और अभी तक इस पहेली का समाधान प्रैक्टिकल जीवन में हमने नहीं लिया है. और जिस दिन इस समस्या का समाधान हो गया तो सर्व समस्याओं का समाधान इसी में निहित है. तो पहली बात क्या है, मैं कौन हूं. बड़ा सरल सी बात है, जब हम आपस में मिलते हैं हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक मैं और एक मेरा. मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं. अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं ना. अगर हम आपको कहें कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो आप अक्सर करके बताएंगे, अगर आपका नाम जो भी है, रमेश, उमेश, दिनेश, सुरेश, कमलेश, तो आप कहेंगे मैं दिनेश हूं, आई एम सुरेश, ऐसे करके अपना नाम या अपनी क्वालिफिकेशन, अपना डिजिग्नेशन, अपनी नेशनैलिटी, जेंडर, कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, इन चीजों से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं. ऐसे करते हैं ना, मैं फलाने धर्म का हूं, मैं इंडियन हूं, अमेरिकन हूं, जो हमारी नेशनैलिटी है. लेकिन ये जो आपने परिचय दिया, ये आपके आउटर सेल्फ का परिचय है, जिनको हम इन चरम चक्षुओं से देख पा रहे हैं, जो हमने इस दुनिया में आने के बाद एक्वायर किया है. इसको हम एक्वायर्ड सेल्फ भी कह सकते हैं. लेकिन ये मैं नहीं हूं, थोड़ा सा हमें जानना है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा है, जो डूइंग से रिलेटेड है. लेकिन एक बीइंग पार्ट है जिसके साथ ही सब जुड़ा हुआ है, वो मैं कौन हूं. अब जैसे आपने वस्त्र पहना है तो आप ये कह सकते हैं ये मेरा वस्त्र है, मेरी शर्ट है, मेरी साड़ी है, मेरा ट्राउजर है. लेकिन आप नहीं है ये, आप इससे भिन्न है. ऐसे शरीर एक मेरा फिजिकल कॉस्ट्यूम है, वस्त्र है. ये पुरुष का पोशाक भी हो सकता है, स्त्री का पोशाक भी हो सकता है. लेकिन इस वस्त्र को धारण करके इन चरम चक्षुओं से देखने वाली, मुखरूपी माइक्रोफोन से बात करने वाली, कानों के द्वारा सुनने वाली, हाथों के द्वारा कर्म करने वाली, मैं कौन हूं, Who am I? मैं वो शक्ति हूं जिसका अस्तित्व इसमें प्रवेश होने से पहले भी था, आज भी है, और इसका त्याग कर देने के बाद भी रहेगा. वो ताकत जिसका अस्तित्व तीनों कालों में है, था, है और रहेगा. कभी मैं अपने आप को अपने प्रोफेशन से इंट्रोड्यूस करती हूं, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर. भाई मैं डॉक्टर आज बनी हूं, लेकिन आज से 20-25 साल पहले जब मैं नहीं थी तब भी तो मैं शब्द का इस्तेमाल करती थी. और जब मैं आफ्टर रिटायरमेंट, ये डिजिग्नेशन मेरे साथ नहीं रहेगा, तब भी मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगी. तो वो ताकत जो तीनों कालों में है, जिसका अस्तित्व, वो क्या है, है ना. अभी अभी कहेंगे ये डॉक्टर है, जब वो शक्ति चली जाती है हम कहते हैं डॉक्टर था. कौन था? जो इस शरीर में प्रवेश होकर डॉक्टर का रोल अदा कर रहा था. अब हमसे मिस्टेक क्या होती है कि हम रोल को जो है, जो मेरा रोल है वो मैं कह देते हैं। तो मैं डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आई एम अ सोल, आप इसको सोल कहें, एनर्जी कहें, लाइट कहें, राइट, एक ही बात है। और आत्मा इस देह रूपी वस्त्र को धारण करके डॉक्टर का रोल अदा करती है, इंजीनियर का रोल अदा कर रही है, जो भी आपका रोल है वो आप इस वस्त्र को धारण करके करते हैं। अब रोल आप चेंज भी करते हैं समय प्रति समय, लेकिन जो रोल अदा करने वाली शक्ति है वो आत्मा इससे भिन्न है ना। जैसे आप अभी प्लेयर का, खिलाड़ी का रोल अदा करेंगे, लेकिन रोल अदा करने वाली शक्ति कौन है? आत्मा है। अब देखिए ये माइक्रोफोन काम कर रहा है, ये बहुत हेल्प कर रहा है मेरी और आपके बीच में कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए। मैं बात करती हूं, ये पीछे तक आवाज पहुंचाता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन जब इसमें से लाइट चली जाए तो ये माइक्रोफोन काम करेगा? बताएं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लाइट है, जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है। तो शरीर इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये तब तक कार्य कर सकता है जब तक इसमें लाइट है। लाइट मतलब आत्मा, एनर्जी, सोल। अब जब वो आत्मा चली जाती है, शरीर निष्प्राण हो जाता है, तो हम कहते हैं द लाइट हैज गॉन, आत्मा चली गई। अब ये सारे ऑर्गन कार्य करना बंद कर देते हैं और ये निष्प्राण हो जाते हैं। ठीक है, राइट बात है ये। अब अगर हम इसको देखें तो प्रैक्टिकली इस शरीर का महत्व है, क्योंकि शरीर की जो तुलना है वो किससे की है? गाड़ी से, और आत्मा इसका चालक है। अब गाड़ी कितनी भी कीमती हो, इंपोर्टेड गाड़ी हो, और आप बड़े नशे से कहते हैं कि दीदी मेरी 60 लाख की गाड़ी है, गाड़ी कितनी अच्छी हो, इंपोर्टेड है। अब क्या है कि अगर उसका चालक स्ट्रांग नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, तो गाड़ी का क्या करेगा? क्या करेगा? एक्सीडेंट करेगा। कई बार ऐसा ही होता है घरों में भी कि हम भाई विदेश से ले आते हैं, रिश्ते में लड़की घर में ले आए, कहते हैं भाई हमारे तो यहाँ विदेशी आई हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन चालक जो है वो बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो कहते हैं भाई अभी तो चलेगा नहीं एंड तक। क्या कारण है चालक स्ट्रांग न होने के कारण? एवरी थर्ड मैरिज एंड्स इन डाइवोर्स, क्योंकि आइडियाज क्लैश होते हैं। तो जितना महत्व गाड़ी का है उतना ही चालक का है या नहीं है? जो कहते हैं नहीं उतना ही है, कैन यू रेज योर हैंड्स प्लीज? यस, है महत्व। हम ये नहीं कह रहे गाड़ी का महत्व नहीं है, इसका भी है, लेकिन चालक अगर नहीं शक्तिशाली होगा तो गाड़ी डेस्टिनेशन तक नहीं जा पाएगी। गाड़ी की जरूरत है, बिना गाड़ी के चालक भी कैसे आपको पहुंचाएगा। लेकिन अब क्या हो गया है कि हमारा ज्यादा ध्यान सारा दिन आंख खुलते ही कहां जाता है? कहां जाता है? हैं? गाड़ी पर जाएगा ना, शरीर पे जाएगा। उठते ही घरों में उठेंगे, उठते ही सवेरे, ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने एक्सरसाइज की है, इट इज गुड फॉर फिजिकल फिटनेस, हम इसको बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे रखते हैं, ये जरूरी है। लेकिन इसके साथ आत्मा की फिटनेस भी जरूरी है या नहीं है? क्योंकि शक्ति तो आपको अंदर से मिलेगी ना। अब आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके थॉट्स पॉजिटिव नहीं है करते करते, तो आप पर उस एक्सरसाइज का इफेक्ट भी पॉजिटिव नहीं आएगा। अगर आप फिजिकली फिट रहना चाहते हैं तो भी आपकी सकारात्मक सोच इसको बहुत ज्यादा, यानी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। तो कहने का भाव है कि अब हम लोग सवेरे उठते ही आंख खुलते ही ऑफिस जाना है, भोजन बनाना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, दूध लेकर आना है, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हमें याद रहती हैं, करते हैं, वो सारी किससे रिलेटेड है? इस शरीर से। और जब आत्मा की बात आती है, आप यहां ज्ञान सुनते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप कहते हैं बहुत आनंद आ गया। फिर हम कहते हैं अच्छा चलो आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना। कहते बहन जी अच्छा तो बहुत लगता है, सच बताएं टाइम नहीं है। क्या बोलते हैं? टाइम नहीं है, ऐसे बोलते हैं। मैं किसी से बात कर रही थी, उस तो सीनियर एग्जीक्यूटिव से, तो उन्होंने मुझे बोला टाइम नहीं है। तो मैंने उनको एक मिसाल बताया, मैंने कहा एक व्यक्ति साइकिल पे दौड़ रहा था और साइकिल लेके दौड़ रहा था, पकड़ी हुई थी और दौड़ रहा था। तो किसी ने उससे पूछा कि भाई आप साइकिल पकड़ के क्यों दौड़ रहे हो? तो कहा कि मुझे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है और वक्त पे पहुंचना है, मुझे लेट हो रहा है इसलिए मैं दौड़ रहा हूं। उसने कहा भाई दौड़ने से अच्छा तुम इस साइकिल पे बैठ जाओ और वक्त से पहले पहुंच जाओगे। तो वो जवाब देता है कि मुझे ना आप डिस्टर्ब ना करें, मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है। आप सोच सकते हैं, है ना बात वही। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, लेस एफर्ट में आपको ज्यादा सक्सेस मिले। जिस भी क्षेत्र से आप हैं, चाहे खेल के क्षेत्र से हैं, आपकी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, क्रिएटिविटी बढ़ जाए, तो आप चाहते हैं ये बात या नहीं चाहते बताएं? तो समय निकालेंगे ना। तो टाइम नहीं की बात नहीं है, टाइम सबके पास इतना ही है, सबके पास बराबर है, लेकिन जिस चीज को आप प्रायोरिटी बेसिस पे लेंगे उसके लिए आप टाइम निकालेंगे, और जिस चीज को प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं लेंगे उसके लिए आप कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है। अब हम लोग हैं ब्रह्मा कुमारीज, मैं भी एक्सरसाइज करती हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूं। हम अमृत वेले 4 से 4:45 योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये हमारा फिक्स्ड है, और 4:45 से 5:45 तक हम एक्सरसाइज करते हैं, मैं पर्सनली करती हूं। इसलिए अपना वेट का ध्यान भी रखते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं, और उसके बाद 6:45 अपना काम, नृत्य क्रिया करने के बाद जो भी है, हम 6:45 क्लास में आ जाते हैं। तो अब आप सोचिए कि उसमें आपकी एक्सरसाइज भी हो गई, आपका मेडिटेशन हो गया, और जो हमारा ये क्लास अभी सेशन चल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारी फूड फॉर द सोल, ये आत्मा का भोजन है, है ना? तो ये जो हमारे स्पिरिचुअल सेशंस होते हैं, दिस इज फॉर द स्पिरिट। अब जब आपकी आत्मा सशक्त हो जाती है, 8 बजे के बाद आप जो भी कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद ऑफिस जाएं, बच्चों को देखें, भोजन बनाएं, जो भी आपके कार्य हैं, आप देखेंगे आपका घर एकदम स्मूथ चलेगा, और जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं आपकी सक्सेस हाइट्स पे चली जाएंगी। आप कहेंगे क्या मिरेकल हो गया? मिरेकल ये हुआ कि आपने अपनी दिनचर्या और रूटीन को विधि पूर्वक चलाया, आपने शरीर को सशक्त बनाया, साथ में चालक पर भी क्या किया, क्या किया, ध्यान दिया। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। अगर हमारे को सेल्फ के बारे में जानकारी नहीं है तो खाली हम इस आउटर सेल्फ की बात करेंगे, और सबसे बड़ी बात जब मेरे में कोई भी चीज का, जिसको मैं कहती हूं कि एक्वायर्ड सेल्फ का कॉन्शियसनेस है, वो ईगो डेवलप करता है। ईगो, जितनी ज्यादा पढ़ाई होगी, जितना अच्छा औहदा होगा, मेरे में मैं एरोगेंट होती जाऊंगी। लेकिन अध्यात्म आपको, आपके ईगो को आंसर करता है। इस क्षेत्र में आप जितना महारत हासिल करेंगे उतनी आप में नम्रता, शालीनता, सौम्यता, दिव्यता, शिष्टता आती जाएगी। तो आप देखिए जो वैल्यूज हैं वो आएंगी जब आप इनर सेल्फ को पहचानेंगे, राइट? जैसे मैं समझती हूं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, तो दूसरे व्यक्ति को हम अपने बराबर देखते नहीं हैं। हमारे बोल में, चाल में, व्यवहार में ईगो आता है, आइडियाज क्लैश होते हैं। लेकिन जैसे हम समझते हैं कि ठीक है, आई एम प्लेइंग माई रोल एज अ डॉक्टर, आई एम प्लेइंग माई रोल एज एन इंजीनियर, और ये एक साधारण व्यक्ति के रूप में बात रोल अदा कर रहा है, बट है तो ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, हम दोनों एक ही पिता के बच्चे हैं। तो आप बोलिए हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? हमको सबके प्रति प्यार, सबके प्रति रिस्पेक्ट, सबके प्रति सहयोग, सबके प्रति सद्भावना, सबके प्रति अपनेपन का भाव पैदा होगा। और जब ये चीजें हमारे अंदर आने लगती हैं, तो हम हर क्षेत्र में कामयाबी की बुलंदियों को छू लेते हैं। तो इसलिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आत्मा जो है उसकी कोर वैल्यूज हैं। कोर वैल्यूज क्या हैं? जो आप चाहते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि आप क्या क्या चाहते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं सतो प्रधान सतो गुणी आत्मा। आत्मा क्या है? सात गुणों का मिश्रण है। जैसे शरीर पंच भौतिक तत्वों का पुतला है, कैसे पता चलता है कि पांच तत्वों से बना है शरीर? क्योंकि पांचों ही तत्वों में से जिस भी तत्व की शरीर में कमी आती है, आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। होता है ना ऐसा? अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के कारण से ज्यादा लोगों ने देह का त्याग किया। दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन। अब मेरे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ गई, तो ऑक्सीजन की जगह कोई दूसरी गैस अगर प्रोवाइड की जाए, विल इट डू? नहीं, क्योंकि मेरा बॉडी ऑक्सीजन से बना है। 80% ऑफ माई बॉडी कंटेन्स वाटर। अब मेरे को जॉगिंग करने से या जो भी एक्सरसाइज करने से मेरे को पसीना आया, पसीने से अंदर का पानी बाहर आने से वाटर लेवल डाउन हुआ और मुझे बहुत तेज प्यास लगी। अब उस प्यास को कंपनसेट करने के लिए कोई दूसरा लिक्विड ऑफर करे तो विल इट डू? नो। आप कहेंगे आई ओनली वॉन्ट टू हैव प्लेन ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। क्यों? क्योंकि आपका जो शरीर है वो पानी से बना है। तो इसलिए जिस चीज की आपको जरूरत महसूस होती है वो आपकी ही चीज है। उसकी कमी आपके बॉडी में आ गई है, अब आप उसकी कमी को पूरा करने के लिए उस चीज की डिमांड करते हैं। ऐसे ही मैं किस चीज की डिमांड करती हूं? मेरी आत्मा। मैं कहती हूं मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। आई लाइक प्योरिटी, आई लाइक पीस, आई वॉन्ट टू बी कंटेंटेड। ऐसा बोलते हो ना? अब ये क्यों बोलते हो? क्योंकि ये आपकी ही चीज है, आपकी आत्मा की कोर वैल्यूज हैं। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस की कमी की वजह से मैं अपने आप को बॉडी से कनेक्ट कर लेती हूं, एंड बॉडी कॉन्शियसनेस की लेयर्स मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप का एक्सपीरियंस करने नहीं देती है। अब मेरे मुख्य गुण क्या हैं? पहले बात, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। आप नोट कर सकते हैं, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, नॉलेज। आई एम ए नॉलेजेबल सोल। दूसरा, मैं पवित्र स्वरूप हूं, आई एम अ प्योर सोल। मैं शांत स्वरूप हूं, आई एम अ पीसफुल सोल। मैं प्रेम स्वरूप हूं, आई एम अ लवफुल सोल। मैं सुख स्वरूप हूं, आई एम अ हैप्पी सोल। मैं आनंद स्वरूप हूं, आई एम अ ब्लिसफुल सोल। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, आई एम अ पावरफुल सोल। तो नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, ब्लिस, हैप्पीनेस एंड पावर, ये सात मूल गुण मुझ आत्मा में समाए हैं। और जब हम देह के अभिमान में आसक्त होकर कर्म करते हैं तो हम में डिस वैल्यूज आती हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो, हेट्रेड, एनिमोसिटी, रिवेंजफुल फीलिंग, डोमिनेटिंग, इंसल्टिंग, अब्यूजिंग अदर्स एंड सो ऑन। ये किस लिए? द कॉन्शियसनेस ऑफ दिस फिजिकल बॉडी। तो शरीर जरूरी है, लेकिन शरीर के अभिमान में आसक्त होकर कर्म करना ये जरूरी नहीं है। तो जो ये डिसवैल्यूज हैं या मेरे अंदर जो टॉक्सिक थॉट्स आते हैं, विशेष थॉट्स आते हैं, ये देह के अभिमान में आसक्त होने से आते हैं। तो अब बताइए, जब मेरी नकारात्मक सोच शुरू हो जाएगी तो मेरी परफॉर्मेंस लेवल क्या होगा? डाउन होता जाएगा। लेकिन जब आप वैल्यूज की बात करेंगे तो आत्मा निश्चय करने से मेरे में मूल्य आने लगते हैं, मैं शांत स्वरूप होकर व्यवहार में आती हूं। तो देखिए बहुत इंटरकनेक्टेड है, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान की पहचान मेरे में पवित्रता होगी, और जो पवित्र आत्मा है वो एकदम शांत होगी, क्योंकि उसकी इंद्रियां कभी मिस्चीवियस नहीं होगी, वो बिल्कुल शांत होगा। और शांत जो मन से होगा उसके व्यवहार से प्रेम टपकेगा, क्योंकि कई बार हमारे मुख से निकलता है कि ये मेरे साथ गुस्सा कर रहे हैं। सोच के देखिए, ये मेरे साथ गुस्सा नहीं कर रहे, ये अंदर से अशांत हैं, और ये केवल शब्दों के माध्यम से अपनी आंतरिक स्थिति को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये अंदर से अशांत हैं। आई मस्ट हैव मर्सी ऑन सच सोल, मुझे उस आत्मा पर रहम करना है क्योंकि वो अंदर से अशांत है। तो अंदर की शांति आपके व्यवहार में प्रेम लाएगी, तो आप ठीक है ना, प्रेम से यानी लवफुल होंगे। और जब आप प्रेम से सबसे पेश आएंगे तो आप सुख का अनुभव करेंगे, दूसरों को भी आप सुख देंगे, सुख स्वरूप हो गए। और सुख की असीम स्टेज का नाम क्या है? आनंद है। और जब ये छह आपके पास आ जाती हैं, आप में विल पावर आ जाती है, शक्ति। जब विल पावर आ गई, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अभी कई बार हमारे मुख से निकलता है, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट, आई एम नॉट गुड एनफ, मैं नहीं कर सकता, मेरे में ताकत नहीं है, मैं एक अचीवर नहीं बन सकता, मैं बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, मेरा भाग्य ठीक नहीं है, मेरे को मालूम है ना, मुझे आप यहीं छोड़ दीजिए, मैं नहीं कर सकता, मैंने जब भी कदम उठाया मुझे कभी सफलता नहीं मिली। ये कमजोर आत्मा के बोल हैं या शक्तिशाली आत्मा के बोल हैं? कमजोर। तो यह स्मृति आपको याद दिलाती है, आत्मिक स्मृति, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं जो चाहूं सो कर सकती हूं, मैं जो चाहूं सो बन सकती हूं, मेरी सकारात्मक सोच मुझे सफलता की बुलंदियों पर ले जाएगी। तो आप अगर खिलाड़ी हैं, आप बहुत अच्छा अचीव करना चाहते हैं, आप सकारात्मक सोच के लिए सोल कॉन्शियस स्थिति का अभ्यास करें। तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं सोल कॉन्शियस हूं? अगर ये गुण मेरे कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब मैं सोल कॉन्शियस स्टेज में रह करके कार्य कर रही हूं। तो आप अपने आप को चेक करें बीच बीच में, और फिर अपने लिए प्रोग्रामिंग करें, ठीक है? आप सातों गुण को अगर आप नहीं ले सकते तो इसमें से कोई एक गुण ले लें, कोई एक गुण, और जब एक आ जाएगा ना तो सात अपने आप आ जाएंगे। समझो आपको प्यार अच्छा लगता है तो आपने से सवेरे सवेरे अफर्मेशन लें, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, आज जितनी भी मेरे संपर्क में लोग आएंगे मैं हर एक को प्रेम पूर्वक व्यवहार करूंगी। आप चेक करते रहें, और अगर थोड़ी सी आपसे गलती हो जाए अगले मिनट फिर ठीक कर लें कि इस बात का रिस्पॉन्ड मैं ऐसे भी कर सकती थी, मैं प्यार से बात कर सकती थी, अब मैं ऐसे करूंगी, फिर सिचुएशन आएगी। तो ऐसे अगर आप अपने आप में करते रहेंगे, आप देखेंगे आपको इतना अच्छा फील होगा, आप किसी भी तरह से कमजोरी महसूस नहीं करेंगे, ठीक है? तो यह है आत्मा की कोर वैल्यूज जो आपको बताई। अब आत्मा क्या चीज है? जैसे हाथ, नाक, मुंह, कान, जीभ, त्वचा, इसको मिलाकर के शरीर बनता है, ऐसे ही आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं। वो कौन सी शक्तियां हैं? मन, बुद्धि और संस्कार। कौन कौन सी शक्तियां हैं? मन, बुद्धि और संस्कार। यहां पिक्टोरियल नहीं है। मन, बुद्धि, संस्कार क्या है? मन जो है सोचने की शक्ति का नाम है। माइंड इज थिंकिंग फैकल्टी। जो हम सोचते हैं, जो हम पुरुषार्थ करते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं, ये मन का काम है। ऐसे ही बुद्धि क्या करती है? डिसीजन मेकिंग फैकल्टी है। जब हमें फैसला लेना होता है किसी बात पे, तो उसमें बुद्धि आगे आती है। ठीक है, माने डिसीजन लेना, निष्कर्ष निकालना, तर्क करना, ये बुद्धि का काम है। और तीसरा है संस्कार। अब बुद्धि जब डिसीजंस लेती है, डिसीजन लेने के बाद हम कर्म करते हैं। कर्म को जब हम कई बार रिपीट करते हैं, रिपीट करने के बाद जो इम्प्रेशंस आते हैं उसे हम संस्कार कहते हैं। जैसे मैंने 4-6 बार झूठ बोला तो मेरा झूठ बोलने का संस्कार बन गया। मैंने किसी भी कॉस्ट पे, चाहे मुझे कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े, मैं कहती हूँ मुझे सच ही बोलना है, और मैं सच बोलती रहती हूँ तो सच बोलने का मेरा संस्कार बन जाएगा। अब कई लोग हैं जो बहुत रेगुलर किसी कार्य को करते हैं और बार बार करते हैं, तो उनको करने का संस्कार बन जाता है। ऐसे ही आप पंक्चुअलिटी का भी संस्कार बना सकते हैं, केवल अपने मन में ठान लें। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने संस्कारों को किस तरफ चैनलाइज करना चाहते हैं। अगर आप अच्छा संस्कार बनाना चाहते हैं तो किसी अच्छे कर्म को बार बार रिपीट करें, तो आपका अच्छा संस्कार बन जाएगा। अगर आप साधारण संस्कार बनाना चाहते हैं तो साधारण संस्कार को बार बार रिपीट करें, है ना? तो संस्कार बनते हैं कर्म को रिपीट करने से, संस्कार बनता है। और संस्कार के आधार से हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। अगर मेरे अच्छे संस्कार हैं तो कहते महात्मा है, देव आत्मा है, पुण्य आत्मा है। अच्छे संस्कार नहीं है, दुष्ट आत्मा है, पाप आत्मा है। ऐसे क्यों कहते हैं? आत्माएं तो सभी हैं, लेकिन ये महात्मा, पुण्य आत्मा, दुष्ट आत्मा, देव आत्मा, ये संस्कारों के आधार से निर्भर करता है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कैसा संस्कार बनाना चाहेंगे, श्रेष्ठ संस्कार या साधारण संस्कार या बुरा संस्कार? कौन सा संस्कार बनाना चाहेंगे? जो कहते हैं श्रेष्ठ वो हाथ उठाएं। हाँ जी, तो बहुत ही पॉजिटिव हैं, ताली बजाओ अपने लिए। तो देखिए, श्रेष्ठ संस्कार बनाना है तो हम श्रेष्ठ कर्म को हम रिपीट करते रहें, राइट? जब भी, और जैसे अगर आप संस्कार अच्छा बनाएंगे, उससे केवल आपको फर्क नहीं पड़ेगा, एक बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएंगे। ठीक है ना? बच्चे तो देखो हमारी दौलत है, हमारा धन है वो, क्योंकि हम पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए। और जब भी कोई बात आती है, कहते दीदी हमने तो अपनी जिंदगी जो बनानी थी बना ली, अब तो बस बच्चों के लिए हमारा जीवन है, किसी तरह के ये अपने सही ट्रैक पे आ जाएं, बस यही मन में रहती है ख्वाहिश। हर माता पिता की है ना ख्वाहिश? हाथ उठाएं जिन जिन की है, हमारे बच्चे अच्छे ट्रैक पे रहें। अब वो तब रहेंगे जब हमारे अच्छे संस्कार होंगे और हमको देख करके वो ट्रेवल करते हैं, उनके अंदर संस्कार बर्थ आफ्टर बर्थ ट्रेवल करते हैं। ठीक है ना? ये ऐसी पूंजी है, ऐसी चीज है। अगर आपने अपने बच्चों को पैसा दिया है, वो तो थोड़े समय बाद खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा साथ में, लेकिन अगर आपने संस्कार दे दिए, समझो आपने उनकी पीढ़ियां सफल कर दी, है ना? तो इसलिए हमें संस्कार अच्छे बनाने हैं, हमें अपने संस्कार अपने कार्य क्षेत्र में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। अब जैसे हम आते हैं मन पे, अब मन की जहां तक बात है, तो मैं ये समझती हूं कि जब आप मैदान में आते हैं तो आपको थॉट्स आते हैं। मुख्य रूप से हमारे मन में 4 प्रकार के थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी एंड वेस्ट, राइट?
मैं ये कहना चाहूंगी, मैं थोड़ी आउटलाइंस आपको दे पाऊंगी आज के सेशन में। पॉजिटिव का मतलब है जब हम कहते हैं कि अपने और दूसरे के कल्याण का हम सोचते हैं, वो है पॉजिटिव, जिसमें हमारा भी कल्याण हो, सामने वाले का भी कल्याण हो। तो हम हमेशा कहते हैं सी द ब्राइटर साइड ऑफ द सिचुएशन। हर बात के दो पहलू हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ब्राइटर एंड डार्कर। तो जब हम किसी भी स्थिति का उजला पक्ष देखते हैं तो उससे हमें, उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। और नेगेटिव क्या है? जब हम डार्कर साइड देखते हैं वो क्या हो गया? नेगेटिव। तो अब हमारे मन में जो पॉजिटिव हैं वो हमारी शक्ति को बढ़ाते हैं, है ना? जैसे आप किसी को, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी को हेल्प करने की सोचते हैं, किसी के प्रति आप काइंड हार्टेड हैं, किसी की सफलता में आप खुश होते हैं, किसी को आप कोऑपरेट करते हैं, तो ये सारे पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है, आई एम रिचार्जिंग माई बैटरी। अब नेगेटिव सोच से हमारी आत्मा की शक्ति क्या होती है? क्षीण होती है, घटती जाती है, एंड वी फील एग्जॉस्टेड। अभी आप यहां बैठे हुए हैं, बैठे हैं ना, तो सुन रहे हैं आप, और कई बार सुनते हो, हम ऐसे ऐसे भी करते रहते हैं। सामने वाला सोचता है तो बहुत अच्छी तरह से सुन रहा है, लेकिन ध्यान अगर कहीं उसका और है, और किसी से आपकी कोई बात हो गई और आप कहते हैं उसने अपने को क्या समझ रखा है, इस बार तो मैं चुप्पी साध गया, नेक्स्ट टाइम मुझे मिलेगा ना, मैं उसको याद दिलाऊंगा। अब आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? सोच। तो आप यहां बैठे हैं लेकिन यहां उपस्थित नहीं है, यहां की बात आपने रिटेन नहीं की, और आपसे पूछा गया हाँ भाई साहब आप क्या सुन रहे थे, एकदम से आप कहते हैं आई वॉज नॉट हियर। अब आप यहां बैठे भी सोच आपकी कैसी चल रही है? नेगेटिव। तो उससे आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। और उसके बाद अगर आपको कहा जाए कि आप किसी कार्य में जाएं, आप में ताकत नहीं होगी कि आप अच्छी तरह से उसको परफॉर्म कर पाए, क्योंकि आपने अपनी शक्ति को क्षीण कर दिया। तीसरा है नेसेसरी थॉट्स। नेसेसरी का मतलब जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जरूरी काम होते हैं, हम पहले से प्लान कर लेते हैं, वो नेसेसरी में आता है, है ना? जैसे अभी आप खिलाड़ी हैं तो जरूरी बात है कि आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा, ये हम करेंगे, ये करेंगे, इस प्रकार की प्रैक्टिस करेंगे, तो वो नेसेसरी थॉट्स में आता है। और एक है वेस्ट थॉट्स। वेस्ट का मतलब जिसका, कई लोग ना पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, पास्ट के बारे में। अब पास्ट को आप चेंज तो नहीं कर सकते, कर सकते हैं चेंज? नहीं कर सकते। अब पास्ट के बारे में सोचना या फ्यूचर की हवाई किले बनाना, ये वेस्ट है। अब कईयों के मन में संकल्प आता होगा कि क्या हम पास्ट को रिव्यू ना करें। हम हमेशा, ये परमात्मा ने सिखाया है कि यू मस्ट लर्न फ्रॉम द पास्ट। जो पास्ट में हुआ है उसको रिव्यू करें, लर्न करें। अगर किसी कारण से आपने फेल्योर का एक्सपीरियंस किया है और उस समय सोच लें कि अब इस कमी की वजह से मुझे लाइफ में फेल्योर का एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन अब जिंदगी में मैं उस गलती को फिर से रिपीट नहीं करूंगी, तो आपने लर्न किया, वो ठीक है पास्ट। बट डोंट गेट स्टक अप इन द पास्ट। आप पास्ट को ट्रेवल करें, लर्न करें, और फ्यूचर के लिए आप प्लान करें। यू मस्ट प्लान फॉर द फ्यूचर, लेकिन रहें वर्तमान में, बी इन द प्रेजेंट। तो जो पास्ट या फ्यूचर के बारे में ज्यादा रहते हैं वो वेस्ट है। तो अब आप सोचिए इसमें से कौन से थॉट्स हमें लेने हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी और वेस्ट। आउट ऑफ ऑल दीज फोर थॉट्स हमारे मन में कैसा विचार आना चाहिए? पॉजिटिव। नेसेसरी भी है, लेकिन पॉजिटिव अगर आप सोचते हैं तो जिस नेसेसरी कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत सफलता मिलती है। अब मान लीजिए आप मैदान में गए, ठीक है ना, वहां आप गए खेलने के लिए, तो अब आपको कैसे खेलना है, ठीक है ना, कहां पास देना है, कौन सा शॉट लगाना है, इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। बोलिए हाँ जी या ना जी। हाँ जी चाहिए। अब आपका मन अगर बिल्कुल शांत है, आई एम अ पीसफुल सोल, काम स्टेट ऑफ माइंड, काम स्टेट ऑफ माइंड, तो सही होगा आपका। कैसे खेलना है ना, उस समय विचार आएगा, फिर कहां पास देना है ध्यान पे आएगा, और फिर कौन सा शॉट देना है, ये सारा ध्यान पे तभी आएगा जब आपका मन बिल्कुल शांत है। ये आपका नेसेसरी है, तो एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप हमेशा कामयाबी की मंजिल को छुएंगे। ऐसे ही डिसीजन मेकिंग है। अब डिसीजन मेकिंग में भी हमारी, अब डिसीजन मेकिंग में इंटेलेक्ट का काम है, तो मैं आपको थोड़ा इसका मैकेनिज्म बताना चाहती हूं। जैसे मन में विचार आते हैं और बुद्धि उसको फिल्टर करती है, तो आपके घर में आरओ सिस्टम लगा हुआ है ना, आरओ। अब आरओ क्या करता है, उसमें जो फिल्टर लगे होते हैं उसके जरिए फिल्टर होके पानी स्वच्छ होके बाहर आता है, लेकिन अगर फिल्टर ही चोक हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा, पूरा गंदा पानी आएगा, और बजाय इसके कि आपको तंदुरुस्ती दे, आपकी सेहत और खराब हो जाएगी। तो इसलिए फिल्टर को बीच बीच में चेंज करते हैं, उसकी सर्विस करवाते हैं, उसको सर्विस सेंटर से व्यक्ति बुलाएंगे कि इसको आके ठीक करो। ऐसे बुद्धि क्या करती है, कई बार हमारे डिसीजंस चोक हो जाते हैं, ऐसे चौक हो जाते हैं और कहते क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर सभी के पास जाके पूछेंगे कि आप बताएं मेरी लाइफ में समस्या आई है मुझे क्या करना चाहिए। अब सामने वाला आपको कैसे बताएगा, जैसा उसका फिल्टर होगा वैसा ही तो बताएगा वो भी, हो सकता है उसका पहले से ही फिल्टर चौक हुआ हो आपको क्या डिसीजंस देगा वो, राइट right? तो अब आप बताइए, सब जगह जाना जरूरी है या अपने फिल्टर की सर्विस जरूरी है, बताएं, जरूरी है ना, तो सर्विस स्टेशन पे आना चाहिए या सर्विस स्टेशन से सेवा के लिए बुलाओ। तो आप कितने बड़े सर्विस स्टेशन पे आए हो हमारे हेडक्वार्टर में, यहां सारे अपना फिल्टर ठीक करा के जाना, जाएंगे ना सभी, हाँ ठीक करा के जाना, और फिर ऐसा नहीं है कि यहाँ ठीक करा लिया, यहाँ ठीक करा लिया और वहां जाके अपनी मस्ती में आ गए, है ना, वहां पर फिर क्या करना है, रेगुलर टच में रहना है, यू हैव टू ब्रश अप योर इंटेलेक्ट, ब्रश अप रेगुलर, और अगर आपका फिल्टर बिल्कुल साफ होगा, क्लियर एंड क्लीन इंटेलेक्ट, तो आप देंगे आपके डिसीजंस बहुत अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे डिसीजंस आएंगे, है ना। और वो कैसे होंगे डिसीजंस, अब देखो कई बार क्या होता है कि आपको निर्णय लेना है कि कब पास करना है, कब यानी डिफेंड करना है और कब आपको अटैक करना है, ये डिसीजन कौन लेगा, इंटेलेक्ट। अब इंटेलेक्ट अगर क्लीन एंड क्लियर है तो इमीडिएट डिसीजन आएगा, अब ये करना है, आपने किया और आप पास हो गए, तो जरूरी है ना, स्पोर्ट्स में इसकी आवश्यकता है, कंफ्यूज स्टेज में तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को अपनी इंटेलेक्ट को क्लीन एंड क्लियर रखने के लिए क्या करना है, उसके लिए कनेक्ट द योगा ऑफ योर इंटेलेक्ट विद द सुप्रीम बीइंग, जो सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है उसके साथ अपनी बुद्धि का योग लगाओ। अब आपको आज तो आत्मा के बारे में जानकारी मिल रही है, नेक्स्ट आपका सेशन शायद यही होगा सुप्रीम सोल, जब आप उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो उसकी सारी शक्तियां आपके अंदर प्रवाहित होना शुरू हो जाएंगी और आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि कभी आपके डिसीजन रॉन्ग नहीं होंगे। इसलिए दो तरह की इंटेलेक्ट गाते हैं, सुमति कुमति, क्या है, सुमति कुमति। अब महाभारत में दो काउंसलर थे, विदुर और शकुनी, विदुर की क्या थी? सुमति, और शकुनी की कुमति। अब सुमति से वो बहुत थोड़े से पांडव थे, विक्टोरियस हो गए, और कुमति से उनका सर्वनाश हो गया। तो सारा खेल बुद्धि पर है, और बुद्धि को डिवाइन करने के लिए संगत चाहिए, संग चाहिए। कहते संग तारे कुसंग डुबोए। तो जब आप सत्संग करोगे, रेगुलर कनेक्ट करोगे अपने आप को सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ, और ये जो आज सुन रहे हो ना, ज्ञान की बातें सुन रहे हो, ये रोज सुनते रहेंगे तो ये स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज आपको बहुत ताकत देंगे। तो मैं एक ही बात सबको बोलती हूं कि फिजिकली अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए हम तीन चीजों का ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज, डाइट एंड रेस्ट। एक्सरसाइज, डाइट एंड रेस्ट। मेंटली भी अपने को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें इन तीनों ही बातों का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज, डाइट एंड रेस्ट। जब आप ये डाइट लेते हो, स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज, दिस इज फूड फॉर द सोल, ये न्यूट्रिशियस डाइट है। हो सकता है आपको डिलीशियस ना लगे, दुनिया में भी पूरी पकौड़े समोसे जंक फूड इसको डिलीशियस कहते हैं लोग, पर ये न्यूट्रिशियस नहीं है। जबान को तो अच्छे लगते हैं लेकिन हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। ये जो स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज है इसमें आपको हो सकता है लगे कि देखो जी बहन जी इतने देर से बता रही है, इट्स ओके, लेकिन अगर इसकी जगह 3 घंटे का वो फिल्म देखना हो तो बहुत रुचि से देखेंगे। तो ये जो है न्यूट्रिशियस डाइट है, ये रेगुलर लेनी है ना, इसका ध्यान रखना है। और मेडिटेशन जो है हमें हेल्प करता है रेस्ट एंड एक्सरसाइज के लिए। मेडिटेशन से आपके माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्टिफनेस खत्म होती है, मन को जहां चाहे जिस तरफ चाहे जितना समय चाहे उस तरफ उतना समय डायरेक्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और मेडिटेशन से आपका मन की स्थिति बिल्कुल शांत हो जाती है, आपके थॉट्स काम डाउन हो जाते हैं, तो इट्स ए काइंड ऑफ रेस्ट ऑल्सो। तो जब आप स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस और मेडिटेशन करेंगे, आपकी बुद्धि बहुत ही प्रखर बुद्धि हो जाएगी, डिवाइन इंटेलेक्ट, और डिवाइन इंटेलेक्ट राइट डिसीजंस लेगी जो आपको आपके खेल के क्षेत्र में सही टाइम पे सही डिसीजन लेने से। अब देखो जब आप एंड में होते ना, खत्म होने वाला होता है खेल, उस आखिरी समय में डिसीजन सही लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन ऑफ अ सेकंड, जीत हार में बदल सकती है। ठीक बात है कि नहीं है? मुझे कभी कभी खिलाड़ियों को देख के खेल भगवान का याद आता है। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था तो उस समय कौरव सारे खत्म हो गए थे, पांडवों के पक्ष में जीत आ गई थी। अब वो भगवान उनके साथ रथ पर विराजमान थे अर्जुन के साथ, तो अर्जुन बहुत खुश हुए, तो अब तो हमने युद्ध जीत लिया, वी आर विक्टोरियस। तो मुस्कुरा के भगवान ने उन्हें बोला कि अर्जुन तुम रथ से नीचे उतरो। उसने कहा भगवान अब आप उतरो। उसने कहा नहीं नहीं आप उतरे। उसने कहा भगवान उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, आप उतरे या हम उतरे, इट हार्डली मैटर, अब तो हम जीत गए हैं ना। उसने कहा अर्जुन हमारा आदेश है आप नीचे उतरो। अब जब वो नीचे उतरा, उसके बाद केशव नीचे उतरे, उतरने के बाद वो रथ जो है वो जलकर आग का शोला बन गया, बिल्कुल खाक हो गया। वो अर्जुन बड़ा आश्चर्य से देखने लगा, भगवान ये क्या? उसने कहा हां अर्जुन तुम नहीं जानते, ये रथ तो बहुत पहले से ये कर्ण के और भीष्म के बाणों से जलकर भस्म हो चुका था, लेकिन क्योंकि हम इस रथ पर सवार थे तो ये तुम सरवाइव कर गए, नहीं तो आज हम उतर जाते तो तुम्हारी जीत भी हार में बदल जाती। समझ गए ना? मैं जिंदगी में सदा याद रखती हूँ। जब कभी हम कहीं जाते हैं, सक्सेस बहुत मिलती है, सदा याद रहता है शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। मत भूलो कि किसकी वजह से आपको मिला है। अगर आप में आया मैं, तो आपकी जीत उस समय किसमें बदल जाएगी? हार बदल जाएगी। आप ये फॉर्मूला लागू करेंगे? कौन करेगा जरा हाथ उठाएं? हाँ जी, डिसीजंस राइट तभी आएंगे व्हेन यू कनेक्ट द योगा ऑफ योर इंटेलेक्ट विद द सुप्रीम बीइंग। आपकी इंटेलेक्ट डिवाइन होगी, सही डिसीजन लेगी, सही संस्कार बनेगा। अभी संस्कार क्या है? कर्म को रिपीट करने से संस्कार बनता है। आप जितना अच्छा, जैसे आपके कार्य क्षेत्र में आपके जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, और बाद में तो मन से अपने आप शॉर्ट निकलते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। किसी भी क्षेत्र में आप रिपीट बार बार अभ्यास करें, जैसे ड्राइविंग का कोई अभ्यास करते हैं, तो बस वो बैठे रहेंगे, अपने आप गाड़ी चलती रहेगी। शुरू में उसे कॉन्शियस स्टेज पे करना पड़ता है, बाद में सब कॉन्शियस की मेमोरी में चला जाता है। हमने तो ऐसे भी कार्डियोलॉजिस्ट देखे हैं कि वो ऐसे करते हैं, कान में फोन लगा होता है और ऐसे काम करे जैसे कि एक कपड़ा सिलाई नहीं करते दर्जी लोग, इतने सधे हुए हाथ, परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस। क्या हो गई? प्रैक्टिस। तो हमको क्या करना है स्किल्स को डेवलप करने के लिए? प्रैक्टिस। इसे संस्कार कहते हैं। अब उस स्किल्स के डेवलप के साथ साथ हम अच्छी हैबिट्स की भी प्रैक्टिस करते रहें, ताकि वो अच्छी जो वैल्यूज हैं, हैबिट्स हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, सेल्फ मोटिवेशन आएगा, और एक एनकरेजमेंट मिलेगा, एक हमारी प्रतिबद्धता बढ़ेगी, हम क्रिएटिव बनेंगे, हम आशावादी होंगे, हम सकारात्मक सोच के साथ दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और टीम स्पिरिट जनरेट कर पाएंगे, और हम सदा कभी भी हार कर भी मन से कभी हारेंगे नहीं। इस प्रकार की बातें प्रैक्टिस करने से आपके संस्कार दिव्य बन जाएंगे, जो आपको आपके क्षेत्र में बहुत हेल्प करेंगे। और यह है मन, बुद्धि और संस्कार। तो देखिए सार ये रहा कि संस्कार अच्छे होंगे तो मन में संकल्प अच्छा आएंगे, संकल्प अच्छे बनाने के लिए संस्कार श्रेष्ठ बनाएं, संस्कार श्रेष्ठ बनाने के लिए अच्छे कर्म को रिपीट करें कई बार, और कर्म अच्छे करने के लिए बुद्धि को ईश्वर के साथ कनेक्ट करें। देन देयर वुड बी ओवरऑल चेंज। जस्ट बाय पुलिंग द रेंस हॉर्स कैन बी कंट्रोल्ड। सिमिलरली यू मे कंट्रोल योर माइंड विद बाय पुलिंग योर इंटेलेक्ट। तो उसको परमात्मा से कनेक्ट करो तो आपका मन आपके हाथ से चलेगा। अब लास्ट में हम आपसे बताना चाहेंगे कि आत्मा का जो रूप है वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। सोल इज अ पिन पॉइंट ऑफ डिवाइन लाइट, और शरीर में इसका निवास स्थान भ्रिकुटी है। ठीक है, भ्रिकुटी कहाँ है? मस्तक के बीच में। और अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो ब्रेन में, हाइपोथैलेमस में, उसके नजदीक पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे ऊपर नीचे, और उसको, उस हाइपोथैलेमस में ब्रेन का, ये आत्मा का निवास स्थान है, बिल्कुल यहाँ सेंटर बनता है। इसीलिए आप आत्मा को, या आत्मा को ब्रेन से कंफ्यूज नहीं कर सकते, और मन को दिल से कंफ्यूज नहीं कर सकते, बुद्धि को ब्रेन से कंफ्यूज नहीं कर सकते। ब्रेन इज मियरली ए फिजिकल ऑर्गन, और बुद्धि जो है आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है। हार्ट इज मियरली ए फिजिकल ऑर्गन जो ब्लड पंपिंग का काम करता है, और मन आत्मा की सूक्ष्म शक्ति का नाम है। तो मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। आपने इसका मैकेनिज्म समझ लिया तो आप सेल्फ अवेयरनेस में आ गए, फिर कैसे हमें आगे बढ़ना है ये भी हमें समझ में आ जाएगा। और ये तो हमारा शरीर में निवास स्थान है, लेकिन जो आत्मा का असली धाम है वो परम धाम है। ये जो साकारी मनुष्य सृष्टि है जिसमें हम सब खेल खेलने के लिए खिलाड़ी आए हैं इस वस्त्र को धारण करके, और फिर अल्टीमेटली हमें अपने घर वापस जाना है। जिसको हम परम धाम कहते हैं, जब दीदी आपको परमात्मा का लेसन कराएंगी तो बताएंगी कि मनुष्य लोक है, फिर सूक्ष्म लोक है, फिर परलोक जहां परमात्मा निवास करते हैं, हम आत्माओं का घर भी वही है जो स्वयं प्रकाशित धाम है, जिसमें इस सूर्य चांद के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। अब लास्ट का जो हम आपको बताना चाहेंगे, आत्मा का जो धर्म है वो है प्योरिटी एंड पीस। क्या है? प्योरिटी एंड पीस। तो जो परमात्मा ने खास महावाक्य उच्चारण किए कि सब धर्मों का त्याग कर अपने धर्म में स्थित हो जाओ, अपने धर्म में स्थित होने का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन धर्मों से नहीं था। अपने धर्म का मतलब आत्मा का धर्म। आत्मा का धर्म है शांति और पवित्रता। तो जो हिंदू ब्रदर्स हैं वो कहेंगे शांति और पवित्रता, जो मुस्लिम भाई हैं वो कहेंगे अमन और पाकीजगी, और जो क्रिश्चियन भाई हैं वो कहेंगे प्योरिटी एंड पीस। मीनिंग इज द सेम। तो हम सबका धर्म क्या है? शांति और पवित्रता, प्योरिटी एंड पीस। लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए आप सदा अपने आप को क्या समझें? एक्टर समझें। आत्मा एक्टर है, इस सृष्टि मंच पर अभिनय करने आई है, और केवल अभिनय करने आई है, फिर वापस हमें घर जाना है। तो अगर आप अपने आप को एक्टर के न्यायी कार्य करेंगे समझ के, तो आप देखेंगे कि एक्टर को कभी अपना असली स्वरूप नहीं भूलता है। अगर एक पुरुष स्त्री का रोल अदा कर रहा है स्टेज पर, तो उसे याद रहता है कि मैं वास्तव में पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री हूं, या मैं स्त्री का रोल अदा कर रहा हूं, मैं वास्तव में पुरुष हूं, तो उसको अपना असली स्वरूप कभी भूलता नहीं है। ऐसे अगर हम अपने को एक्टर समझेंगे, तो हम बातचीत किसी से भी कर रहे हों, लेकिन मुझे याद रहेगा कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। यह भी आत्मा है, हम सभी आत्माएं हैं। तो इससे क्या होगा? हमारा यूनिवर्सल ब्रदरहुड का भाव पैदा होगा, विश्व बंधुत्व की भावना, और हम में जो नेगेटिव बातें आ गई हैं, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब खत्म हो जाएगा। जाति भेद, भाषा भेद, वर्ण भेद, प्रांत भेद, ये सब नहीं रहेगा। दूसरी बात, जब एक्टर स्टेज पर आते हैं तो हर एक्टर की कोशिश होती है कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे। तो बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए आप ही बताएं कि वो एक्टर दूसरे के रोल पर फोकस करेगा ध्यान, या अपने पर करेगा? अपने पर। दूसरा क्या कर रहा है वो उसके बारे में वो नहीं सोचता। समझो एक रावण है, वो लाउड बोलता है, एरोगेंट है, और जितना लाउड बोलेगा, एरोगेंट होगा, उतना ज्यादा लोग उसके लिए क्लैपिंग करेंगे, कहेंगे भाई मजा आ गया, रावण तो बहुत बढ़िया बनाया। लेकिन अगर उसी के रोल को श्री राम कॉपी कर ले तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, कहेंगे देखो भाई इनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनको मालूम है इनका रोल राम का है। ऐसे श्री राम के रोल को रावण कॉपी करे, पीसफुल होकर बात करे, तो आप में से ही लोग कहेंगे भाई ये रावण क्या बनाया, इसमें तो जान ही नहीं है, दम ही नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है रावण। तो जिसका जो स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से उसको परफॉर्मेंस देनी होती है, वो दूसरे के रोल को कॉपी नहीं कर सकता। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको साधारण हमें नहीं समझना है। व्यवहारिक क्षेत्र में भी जब आप निकलते हैं बाहर, तो कोई आपके साथ लाउड बोलता है, एरोगेंट होके बात करता है, उस समय आप क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं बोले? आप कहते भाई तू शेर तो मैं सवा शेर, तुमने मुझे कमजोर समझ लिया है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी। तो इसका मतलब आपने क्या किया? उसके रोल को कॉपी कर लिया। आप भूल गए कि आप एक शांत स्वरूप आत्मा है। अब जो भी वो कर रहा है, अंदर से सोचिए कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको मत बोलना ये अपनी परफॉर्मेंस ठीक दे रहा है, क्योंकि इसने अभी तक ज्ञान नहीं सुना है, इसने सेल्फ अवेयरनेस का लेसन पढ़ा नहीं है। और मुझे तो समझ है ना कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, इसलिए मुझे अपने कैरेक्टर से इसे सिखाना है। तो आप क्या करोगे? उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन आप अपने पीसफुल स्टेट से उससे व्यवहार में आओगे। कर सकते हैं? जो कहते हैं हम कर सकते हैं वो हाथ उठाएं, ये फाइनल हाथ है आपका। आज अभ्यास करना, अभी जाओगे ना बाहर, अभ्यास करना। कोई यहां से कुछ बोलेगा, थोड़ा धक्का दे देगा, आपकी चप्पल उठा के फेंक देगा, कुछ भी कर सकता है। ब्रेकफास्ट में थाली आपने लगाई, आके वो बैठ जाएगा। अब आपके मन में कुछ भी हो सकता है, हर सेकंड हर मिनट के बाद कुछ कुछ होता रहेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि हर आत्मा अपना रोल अदा कर रही है, बहुत बढ़िया है, बट मेरा रोल क्या है? आई एम अ पीसफुल सोल, आई मस्ट रिमेन पीसफुल। मुझे सारा दिन पीस के प्रकंपन चारों तरफ फैलाने हैं। तो इसलिए यह है आज का लेसन। अब हम नेक्स्ट सेशन में जब भी आप उसे मिलेंगे तो हम कहते हैं ओम शांति। ओम मीन्स
ओम शांति।
ओम का मतलब मैं आत्मा हूं और मेरा धर्म शांति है। तो जैसे हम स्वप्न में नहीं भूलते कि मैं मेल हूं या फीमेल हूं, ऐसे मैं स्वप्न में भी ना भूलूं कि मैं एक आत्मा हूं। इट शुड बी वेरी वेरी नेचुरल। ठीक है, तो ये आज का लेसन है। अभी हम एक मिनट साइलेंस अभ्यास करा दे, 5 मिनट का ही नहीं, थोड़ा सीधा होकर के बैठेंगे, स्ट्रेट। तन से रिलैक्स हो जाएं। अपने ध्यान को मस्तक के बीच भ्रिकुटी पर केंद्रित करें। विजुअलाइज करें मैं आत्मा, चमकता दिव्य सितारा, भ्रिकुटी के मध्य विराजमान हूं। इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर सृष्टि रूपी मंच पर, मैदान में खेल खेलने आई हूं। जीवन के इस खेल में कभी हार कभी जीत, कभी खुशी कभी गम, परंतु मैं आत्मा अपनी सकारात्मक सोच के माध्यम से हर परिस्थिति में विजय प्राप्त कर लेती हूं। मैं सदा ही विजयी हूं।
मैं कम सोचती हूं। सकारात्मक सोचती हूं और शक्तिशाली विचार। वातावरण में फैलाती हूं। मेरे यह शांत और शक्तिशाली प्रकंपन वातावरण को शक्तिशाली बना रहे हैं। मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मैंने परमात्मा को साथी बना लिया है। मैं अपनी बुद्धि को उस सर्वशक्तिवान से कनेक्ट रखती हूं। उन्हीं से गाइडेंस लेती हूं। मेरी बुद्धि दिव्य बन चुकी है। Clean and clear intellect, divine intellect, जीवन के इस खेल में कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेना मेरा संस्कार बन गया है। अब मैं अपने इन दिव्य संस्कारों से प्रैक्टिकल जीवन से दूसरों को प्रेरणा देती रहूंगी। मेरी ये सकारात्मक ऊर्जा मुझे आत्मसंतुष्टि का अनुभव कराती है। जीवन संघर्ष की जगह खेल लगने लगा है। शुक्रिया उस परमात्मा का जिसने मुझे सेल्फ अवेयरनेस दिया। महसूस करें उस सर्वशक्तिवान से शांति प्रेम शक्ति पवित्रता के प्रकंपन अपने में प्रवाहित होता अनुभव करें। कितना हल्कापन आनंद का अनुभव है। बस इस अनुभव को स्वयं में समाये हुए कार्य क्षेत्र पर विचरण करें। शांति दूत बनकर शांति के प्रकंपन फैलाते रहे। ओम शांति।